नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार 1 जून 2022 को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों को कम करने की घोषणा की। आज से 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 135 रुपये सस्ता हो जाएगा। 19 किलो का वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत अब दिल्ली में 2354 रुपये प्रति बोतल के मुकाबले 2219 रुपये होगी, जबकि कोलकाता में ये 2454 रुपये के बजाय 2322 रुपये, कोलकाता में 2171.50 रुपये के बजाय 2306 रुपये होगी, मुंबई और चेन्नई में 2507 रुपये के बजाय 2373 रुपये। देश में घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 19 मई को बढ़ोतरी की गई थी। ये एक महीने में दूसरी बार था जब खाना पकाने की कीमतों में वृद्धि की गई थी। 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जबकि 19 किलो के वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में 8 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के सीईओ रोनो जॉय दत्ता ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को वास्तविक समस्या बताते हुए सरकार से घरेलू उड़ानों के किराए की अधिकतम सीमा बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। दत्ता ने पीटीआई भाषा के साथ बातचीत में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय को घरेलू उड़ानों के किराए पर लगाई गई अधिकतम सीमा को अब बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में विमान ईंधन के दामों में आई तेजी को देखते हुए मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिए। सरकार ने वर्ष 2020 में सख्त लॉकडाउन के बाद विमानन क्षेत्र को परिचालन की अनुमति देते समय किराए की अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा तय कर दी थी। इंडिगो अब इसी सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जून से अपने होम लोन की दरों में वृद्धि करा रहा है। एसबीआई ने अपनी ईबीएलआर दरों को 40 आधार अंकों से बढ़ाकर 7.05% कर दिया है और रैपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को संशोधित कर 6.65% प्लस सीआरपी कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई में अपनी रैपो दरों में बढ़ोतरी के बाद एसबीआई होम लोन ईएमआई आज से बढ़ने वाली है। जून के वित्तीय परिवर्तन प्रमुख निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक के ग्राहकों की जेब को भी प्रभावित करेंगे। एक्सिस बैंक ने बचत और वेतन खातों वाले ग्राहकों के लिए अपने बैंकिंग और गैर बैंकिंग सेवा शुल्क में संशोधन किया है, जिसमें न्यूनतम खाता शेष नहीं रखने पर प्रति माह सेवा शुल्क में वृद्धि और मासिक औसत शेष राशि की आवश्यकता में वृद्धि शामिल है। वाहन विनिर्माता एमजी मोटर इंडिया ने बुधवार को कहा कि मई 2022 में उसकी खुदरा बिक्री दोगुना होकर 4008 इकाइयों की रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक साल पहले सामान महीने में उसकी बिक्री 1016 इकाइयों की रही थी। वहीं अप्रैल 2022 में एमजी ने 2008 वाहन बेचे थे। एमजी मोटर इंडिया ने कहा कि मई महीने में उसकी खुदरा बिक्री में दर्ज की गई जोरदार तेजी सेमीकंडक्टर चिप की उपलब्धता में सुधार को दर्शाती है। इसी के साथ कंपनी ने उम्मीद जताई कि आने वाले महीनों में हालात और बेहतर होंगे। कंपनी ने कहा कि घरेलू बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में अब भी कोविड से जुड़ी पाबंदियां रहने से उत्पादन पर असर बरकरार है। दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने मंगलवार को एक वैश्विक कार्यक्रम में कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन के लिए ई बैंड स्पेक्ट्रम और सेटकॉम का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल समावेशन का एजेंडा वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास के केंद्र में है। चौहान ने जिनेवा में वर्ल्ड समिट ऑफ इन्फॉर्मेशन सोसाइटी 2022 के उद्घाटन समारोह में कहा कि सरकार समावेशी विकास के लिए खुले सार्वजनिक डिजिटल मंच बना रही है, जैसे कि सार्वभौमिक भुगतान प्रणाली जिसमें कोई भी बैंक शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा, पर्वतीय इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने में कठिनाई को देखते हुए हमारा ध्यान ऐसी प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर है जो विकास को गति दे सकती हैं और इस अंतर को पाट सकती हैं, जैसे ई बैंड वायरलेस कैरियर LEO और MEO उपग्रह संपर्क। चौहान ने कहा कि सरकार ने LEO और MEO संपर्क के लिए पहला सेवा लाइसेंस जारी किया है और उम्मीद है कि दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य आने वाले दिनों में 2200 मेगावाट की मांग के मुकाबले 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना बना रहा है। शर्मा ने मंगलवार को नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 70 मेगावाट के अमगुरी सोलर पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि राज्य में बिजली की मांग फिलहाल 2200 मेगावाट है। उन्होंने कहा, जल विद्युत और सौर ऊर्जा क्षमता के माध्यम से मांग को पूरा करने का प्रयास जारी है। राज्य 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब है कि असम बिजली की अपनी ज्यादातर जरूरत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के बाकी हिस्सों की विभिन्न कंपनियों से खरीद कर पूरा करता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 22 बिल्डरों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ 63.41 करोड़ रुपए का पानी का बिल लंबे समय से जमा नहीं करने की वजह से वसूली पत्र जारी कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह ने आरसी जारी करने की जानकारी देते हुए कहा कि सभी उपभोक्ताओं को समय से पानी का बिल का भुगतान कर देना चाहिए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।